आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये सच में ये जीवन आपका है। ये कलीसिया जो आपने यहां पर हमारे लिए, मेरे लिए, प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए, अपनी साक्षी के लिए यहां पर रखी है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और हम एक साथ परिवार में होकर प्रभु जी आपके वचनों को सीखते हुए, उनका पालन करते हुए, एक प्रेम में एक दूसरे की सहायता करते हुए, आशों को बांटते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भी प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करिए। इस तुझ दास को प्रभु आप अपने क्रूस के पीछे छुपाइए। होंठों को प्रभु अपनी पवित्र अग्नि की वेदी से शुद्ध करिए। अपनी महिमा के लिए ये वचन को मेरे लिए, हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आप मन को तोड़ने वाले परमेश्वर और आप आशीष देने वाले हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं जो आसानी से भटक जाती हैं, उनको प्रभु अपनी ओर एकाग्रित करिए, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमेन। सो मुझसे कहा गया है कि दो संडे मैं आपके साथ भंडारीपन को ध्यान में रखते हुए कुछ बांटने के लिए तैयार हूं। मैंने इन बॉक्स के बारे में आपको बताया, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने बताया। दूसरा राजा उसका 12 अध्याय 1 से 16 पद तक अगर आपको पढ़ेंगे तो विस्तार से उसको मिलेगा, घर में जाकर आप पढ़िएगा। जो आज हमने व्यवस्था विनय उसका 14 अध्याय 22 से 29 तक पढ़ा था, उसमें अगर हम उसको अध्ययन करें, मैं बीच में शायद उसको छूंगा, तो उसमें दो मुख्य बातें निकल के आती हैं। और मुख्य बातें हैं देने की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ गिविंग, देने का तरीका, मेथड ऑफ गिविंग। ये दो तरीके, दो बातें उसमें निकल के आती हैं कि इस परमेश्वर ने इसराइल को किस प्रकार से, लोगों को, अपनी प्रजा को बताया कि जब तुम ऐसा करो, और बताया जब अगर तुम दूर से यात्रा करके आओ, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तो कैसे उसको तुम तैयार करके आगे दे सकते हो जो दूसरों के लिए हो सकता है। पिछले हफ्ते मेरी आदत है, मैं पेपर पढ़ता हूँ और दैनिक जागरण में पढ़ रहा था, और दैनिक जागरण में एक छोटा सा कहना चाहिए कुछ लिखा हुआ है, और इसमें ये इतिहास 11 मैंने कटिंग कार्यकारी में कटिंग जमा करता रहता हूँ, और यहाँ लिखा है, इसमें लिखा हुआ दानशीलता की सूची में भारत सबसे नीचे, दान देने वालों की सूची में भारत सबसे नीचे। ये कटिंग मेरे पास बाद में देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार के साथ है। और उसमें जो क्या नाम से करीब जो पूरे विश्व में है, विश्व में भारत का नंबर 106 है, भारत का नंबर 106 है, और जो एशियाई देश है, एशियाई देशों में भारत का नंबर 8 है, 8वां है, एशियाई देशों में भारत का नंबर 8 है। और उसमें यद्यपि संख्या लिखी हुई है कि पूरे वर्ष में भारत के लोगों ने पहनाई में या मेहमानों या अजनबियों की मदद करने में, या लोगों को रुपया और पैसा दान देने में, या लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करने में, इन सारी चीज में संख्या दी गई है कितने कितने लोगों ने भारत में ये समय लगाया। मुझे ये विषय पिछले हफ्ते दिया गया था, और जब मैं सोच रहा था तो ये कटिंग पेपर में मेरे पास आ गया, और मैं एकदम विचार करने लगा कि हम विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। आज एक छोटे समूह में होकर, एक कलीसिया के रूप में, जो स्थानीय कलीसिया है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी एक हेडिंग है जो मैं दोस्त देता हूं, दानशीलता की सूची में। अर्थात क्या मतलब है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लोगों में देने की प्रवृत्ति नहीं है, बहुत कम है या तो बहुत कम है। हमारे लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग खर्च करें, जब हम बहुत सारी बातों की बात करते हैं, सो भीड़ में कई कम प्रतिशत लोग ऐसे आ जाते हैं। उन देने की प्रवृत्ति में हमारा समय, जिसमें मैंने इसको आपको बढ़ के बताया कि पेपर में ये विचार किया जा रहा है, हमारा पौनाई करने में, हमारा दूसरों की, निर्धनों की, दूसरों की सहायता करने में, दान धन देने में, ये ऐसी प्रवृत्ति हमारे लोगों में देने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर है। और प्राय आज विश्वासियों के जीवन में भी, प्राय आज विश्वासियों के जीवन में ये निर्बलता पाई जाती है, कमी पाई जाती है। सामाजिक रीति से हम दूसरी तरह से देख रहे हैं, लेकिन विश्वासी के रूप में हम एक, जो विश्वासी प्रभु पे आपके पास आ जाता है और उसके पास आने के बाद हम सब दावा करते हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति में हम कमजोर पाए जाते हैं। किसी ने कहा कि एक बार बपतिस्मा हो रहा था और कुछ लोग बपतिस्मा ले रहे थे और एक भाई भी बपतिस्मे के लिए गया। सुना होगा आपने, कई सारी घटनाएं मुझे याद आ जाती हैं जब मैं गिविंग के बारे में प्रचार करता हूं। तो दे रहा था, तो वो जब उसको पानी में डुबाया जा रहा था, उसने अपना पर्स हाथ में निकाला और ऊपर कर लिया। कहना, पादरी साहब मुझे डुबा दीजिए लेकिन मेरे पर्स को मत डुबाइए। पादरी साहब ने जबरदस्ती इसका पर्स डुबाया तो इसको डूबना जरूरी है। हम सब डूब जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन हमारा पर्स प्रभु के लिए नहीं डूबता। ये कहावत कही आती है, पर आज हम थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। मैं दो बातों को आपके सामने रखूंगा आज, क्यों हमें परमेश्वर को देना है और प्रभु ने चाहा सहायता से आने वाले समय में कैसे हमें परमेश्वर को देना है। यह सीरीज बहुत लंबी है पर फिर भी, और आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है जब हमारा परमेश्वर, जो अद्भुत परमेश्वर है, किस प्रकार से उन बातों को बहुत आगे से सोचता है, बहुत आगे सोचता है। हम बाइबल को जब पलटते हैं, आपने कई बार जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इस स्थल को मेरे साथ थोड़ी देर के निकाल लें और हम कुछ देखना चाहेंगे। उत्पत्ति उसके 14 अध्याय, दशवांश देना परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा में से, आज्ञाओं में से नहीं है। 20 आज्ञाओं में परमेश्वर ने दशवांश देने की आज्ञा नहीं दी है, या आगे आगे आज्ञाएं बढ़ी हैं, उन आज्ञाओं का जब विस्तार हुआ उसमें आज्ञा जोड़ी गई है जिसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन वास्तविक रीति से ये कहां से दशवांश आरंभ हो गया। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो वहां पर हम दशवांश नहीं देखते हैं, वहां पर कुछ और चीज को देखते हैं। तो जब हम कैसे में आएंगे तो शायद हम उधर आएंगे। आज मैं नए नियम के में ज्यादा नहीं जाऊंगा और नए नियम की पदों को ज्यादा नहीं लाऊंगा, शायद एक या दो पद को केवल लाऊंगा, लेकिन अगली बार हम नए नियम में ठहरेंगे। आज हम पुराने नियम में ज्यादातर ठहरना चाहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में ज्यादा ठहरना चाहते हैं। और पुराने नियम में ठहरते हुए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और 17 पद से लेकर उसके 20 पद तक। चिरपरिचित स्थल है, कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमने सुना है। जब वो कदोलार ओमेर और उसके साथी राजाओं को पराजित कर वापस आ रहा था, तो सदोम का राजा शावे की घाटी में, जो राजा की घाटी भी कहलाती है, उससे भेंट करने आया। तब शालेम का राजा मिल्किसदिक रोटी और दाक मधु ले आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। तब उसने उसे ये आशीर्वाद दिया, अर्थात अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर जब ये सब कुछ हो गया तब क्या हुआ, लिखा हुआ है, तब या फिर अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का दशवां अंश दिया। सो सबसे पहले बाइबल में हम दशवें अंश को इस स्थान में पाते हैं जहां अब्राम है। थोड़ी देर के सोचिए क्या परिस्थिति थी। 12वें अध्याय में अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया था। अब्राम की पृष्ठभूमि हम जानते हैं कि अब्राम की जो पृष्ठभूमि थी वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया था कि वो मूर्ति पूजकों की पृष्ठभूमि थी और वो उसका परिवार भी मूर्ति पूजा करता था। यहोशू की पुस्तक में उसका साफ इस पर लिखा हुआ है और अब्राम भी मूर्ति पूजकों में से निकलकर आया। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया, उसने अपने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो आगे बढ़ने लगा। 12 अध्याय में वो आगे बढ़ता है। 13 अध्याय में लूत और अब्राहम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लूत के साथ अब्राहम, क्योंकि लूत के चरवाहे बढ़ रहे हैं और अब्राहम के चरवाहे बढ़ रहे हैं और दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया है। और तब अब्राहम कहता है कि लूत हम अच्छा है, हम और तुम हम दोनों अलग हो जाएं, और तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस रीति से अब्राहम का जो भतीजा है उसके पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया और अब्राहम को खबर आई कि ऐसा हुआ है। अब्राहम एक फौज तैयार करता है और फौज तैयार कर करके वो अच्छा है, कोई योद्धा भी है, और उसने जाकर वहां पर विजय प्राप्त करी, उनको पराजित करके वापिस आता है। और लिखा हुआ है 16 पद में, फिर वो सारी संपत्ति लौटा लाया और अपने भतीजे लूत को उसकी धन संपत्ति सहित तथा स्त्रियों और शेष सब लोगों को भी छुड़ा लाया। लिखा हुआ है छुड़ा लाया। कोई चीज बंधुआई में थी, बंधन में आ गई थी, लेकिन अब्राहम ने उसको छुड़ा लिया। अब छुड़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तब ये राजा आके से भेंट करता है। ये राजा जो मलकीसदेक, यहां पर रोटी और दाख मधु का शब्द जो शब्द आया है, उससे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की बलिदान या उस रोटी या उस कम्युनियन से कोई मतलब नहीं है। उसको कंफ्यूज ना करें कि वो मलकीसदेक यीशु मसीह का चित्रण है, तो ऐसा करने ऐसा नहीं है। लेकिन खास बात जो है ये वहां मलकीसदेक की बात है, और वहां पर वो कहता है कि जो उसके बारे में लिखा हुआ, मलकीसदेक रोटी और दाख मधु लाया और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, लेकिन वो तब उसने उसे आशीर्वाद दिया। ये मलकीसदेक जिसके लिए लिखा है शालेम का राजा, शालेम का राजा इब्रानियों उसके 7 अध्याय उसके 1, 2, 3 पद में आप पढ़ेंगे तो मलकीसदेक का चित्रण वहां पर है। और वहां पर 3 नाम उसके लिए दिए गए, शांति का राजा, शालेम का राजा और 7वां अध्याय और धार्मिकता का राजा। शालेम का राजा, शांति का राजा, धार्मिकता का राजा और शालेम का राजा, ये 3 नाम इब्रानियों उसके 7 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद में दिए गए जो इसके बारे में है। ये यीशु मसीह का चित्रण है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले समय में अपने आप को बलिदान करेगा और बलिदान करके वो आनंद शांति का राजा बनेगा, जिसके द्वारा पूरा संसार उस पर विश्वास करने द्वारा शांति पाएंगे। यह उस प्रकार का चित्रण है। सो यहां पर हम इस राजा को देख रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हम जो यहां पर बैठे हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा उस शांति को पाया है और हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा शांति का राजा है जो हमारे जीवन में वास करता है। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना शांति का राजा करके स्वीकार नहीं किया है तो आप अभी भी पाप में हैं। और बाइबल इस बात को बताती है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह वो जो शांति का राजकुमार है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई, जिसके जन्म के समय में कहा गया, ये सब कुछ किया गया, वो जब तक मेरे और आपके हृदय में राज ना करे तब तक हम उस अनंत जीवन के वारिस नहीं बन सकते और हम उस दर से छुटकारा नहीं पा सकते। तो जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। यदि आपने आज तक विश्वास नहीं किया है, आपके लिए अवसर है कि आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करें, उससे क्षमा प्राप्त करें, उससे क्षमा मांगे और उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, तब वो आपके हृदय में एक शांति का राजा बनके राज करेगा और आप उसके आनंद को पाएंगे। सो यहां पर एक शांति का राजा है, लेकिन इस शांति के राजा जब उसके पास आ रहा, अब्राहम कुछ कर रहा है, मैं दूसरे भाग में लाना चाहूंगा। और केवल एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, लिखा फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दसवां अंश दिया। क्यों अब्राहम ने ऐसा किया? क्यों? ठीक है, वो सब कुछ उसके लिए कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद दे रहा है, उसको धन्य कह रहा है, उसको आशीष दे रहा है, लेकिन अब्राहम के मन में क्यों ऐसा आ गया? मेरे प्रियो, इसीलिए कहा जाता है कि दशवांश जो है वो अब्राम की वंश से आरंभ हुआ। अब्राम ने यह करा, उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय आप आएंगे तो वहां याकूब भी यही बात करता है। याकूब कहता है, और जब वो दर्शन देखता है उसके बाद अपने घर से झगड़ा करके निकल के भागता है, परमेश्वर से रास्ते में बात करता है और 28 अध्याय में आके कहता है कि परमेश्वर यदि तू मुझे अपने घर वापस ले आए और यदि तू मेरे साथ ऐसे करे, यदि मुझे तू लौटा लाए तो मैं ऐसा करूंगा, अर्थात मैं जो कुछ भी मेरे पास होगा सब कुछ का मैं दशवांश तुझे दूंगा। वहां पर अब्राम भी कहता है, याकूब भी कहता है। तो ये बाइबल इस बात को बताती है कि अब्राम के वंश से दशवांश का आरंभ हुआ और परमेश्वर ने उसको स्वीकार करते हुए उसको इसराइलियों के लिए एक निर्देश और आज्ञा के रूप में आगे बढ़ा दिया। क्यों अब्राम ने ऐसा किया, जिस पर मैं खास तौर से आना चाह रहा हूं। अब्राम जब इस बातों को देख रहा है कि परमेश्वर ने उसकी कैसे मदद करी है, वो अपनी उस बुलाहट को याद कर रहा है, कैसे परमेश्वर से प्रतिज्ञा बांधी थी मैं तेरे संग रहूंगा, और यहां देख रहा है कि परमेश्वर उसकी कैसे सहायता करी। 5 राजाओं के विरोध में होकर उसने युद्ध किया और परमेश्वर ने उसको विजय प्रदान करी। जब परमेश्वर ने उसको विजय प्रदान करी तो उसका हृदय इतना अधिक धन्यवादित हो गया, उसका इतना अधिक उसको उत्साह मिल गया कि वो इस दशवांश के द्वारा 3 बातें कर रहा है जो मैं और आप अपने जीवन के लिए ले सकते हैं। कम से कम वो 3 बातें, वो इस देने के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। अब ये मानेंगे बाइबल के अनुसार। दूसरी बात, इस देने के द्वारा वो परमेश्वर का सम्मान कर रहा है। तीसरी बात, उस देने के द्वारा वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी उस बंधन से छुड़ाया जाता है, पाप के बंधन से छुड़ाया जाता है, शैतान के बंधन से छुड़ाता है, शैतान बार 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 मनुष्य को संसार 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 दिखाता है, संसार की अभिलाषाओं की चीजें दिखाता है, उसकी आंखों में सब कुछ में चित्त में सारी चीज ये डालता है और वो उसके ओर खींचता चलाता है। लेकिन जब मनुष्य उससे निकलकर परमेश्वर के राज की ओर प्रवेश करता है और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य नई सृष्टि बनाता है, तो नई सृष्टि में नई सोच बनती है, नई इच्छा बनती है, नई जिज्ञासा बनती है, सब कुछ नया बनता है और उसमें फिर वो परमेश्वर को दूसरी रीति से देखने लगता है। यहां अब्राम परमेश्वर को एक दूसरी रीति से देख रहा है और देखने के कारण, उस परमेश्वर को देखने के कारण, उस देने के कारण वो परमेश्वर का की आराधना कर रहा है। जब इसराइली लोगों को, मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास उसका 16 अध्याय। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम देने की बात करते हैं तो देना परमेश्वर की आराधना करना है, देना परमेश्वर की आराधना करना है। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 28 और 29 पद को, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। अगर आप पुराने नियम का अध्ययन करें, जैसे परमेश्वर निर्गमन उसके 20 अध्याय में मूसा के द्वारा आज्ञाओं को देता है और उसके बाद 20 अध्याय से लेकर 24 अध्याय के अंदर मूसा को इस बात का वर्णन करता है कि मूसा तुझे मेरे लिए एक मिलाप वाले तंबू को बनाना है और मिलाप वाले तंबू को इस प्रकार से बनाना होगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही 25 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, वहां से हम देखते हैं जब ये तंबू और तंबू की सारी चीजें बनने लगती हैं तो किस प्रकार से लोग आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए वो देने शुरू कर देते हैं। भेंट जो है केवल शब्दों की भेंट की बात नहीं करता, लेकिन भेंट जो है जो हम भौतिक रीति से, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो हमारे समय के रूप में हो, चाहे हम किसी भी चीज के रूप में जो हम अर्पण करते हैं, मेरे सिद्ध ध्यान रखिए, जब भेंट हम जब देते हैं हमें ध्यान रखना है। सो यहां पर वो कह रहा है कि भेंट लेकर परमेश्वर की आराधना करो। सो केवल शब्दों से तो आराधना करना बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत आते हैं, हाथ उठाते हैं, जब ऑफरिंग का समय आता है तो 5 पैसा डाल देते हैं, यही हाथ आराधना के लिए उठ रहे हैं, लेकिन भेंट का समय आया है तो कितना हम डाल रहे हैं। जब हम इन सारी बातों पर विचार करते हैं तो जितना अधिक हम परमेश्वर के कार्य को देखते और समझते हैं, इसके बाद एक और स्थल में हम आएंगे, तो उतना अधिक हमारे देने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आता चला जाता है। देने की ना केवल कह रहा है उसकी भेंट लेकर उसकी आराधना करो, तो आराधना है, दूसरी बात देने के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब अध्ययन करते हैं याकूब के जीवन के बारे में, याकूब यूसुफ अब एक शासक बन गया है। अगर उत्पत्ति उसके 43 अध्याय में आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा यूसुफ अब शासक बन गया है। और वहां पर आप जहां पर ये याकूब है वो अकाल पड़ा हुआ है कनान में, और ये याकूब के बेटे वहां जाते हैं और उनको नहीं मालूम कि अभी यूसुफ शासक बन गया है, लेकिन वहां से अनाज लेकर आते हैं, कुछ कुछ घटना घटती है। तब याकूब उनसे कहता है कि तुम अब पुनः जा रहे हो सामान लेने के लिए, यद्यपि तुम्हारे बोरे में पैसा रख गया गया हो, सकता है धोखे से रखा गया हो, तुम जाओ पैसा लेके जाओ और पैसा। लेकिन तब वो कहता है लेकिन उस शासक के लिए तुम फलाने फलाने चीजें जो हैं एक उपहार के रूप में लेते जाना। उत्पत्ति उसके 43 अध्याय, ये सम्मान है, ये सम्मान है। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, और ये हमारी प्रवृत्ति के अनुसार होता है कि हम किसको कैसी चीज देने चाहेंगे। आपको मालूम है हम लोग 12 अंकी में थे, बहुत सारे अनुभव प्रभु ने दिए। एक बार एक हमारे यहां बेचारा गरीब व्यक्ति आता था, भीख मांगता था वो, और हम अक्सर उसको कुछ ना कुछ दे देते थे। और एक दिन मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे कहीं जाना था, हम दोनों जन थे, और मैंने उसको जल्दी से, मैं सोचता हूँ 20 साल या 25 साल पहले की बात हो गई होगी, उस समय मैंने उसको 1 रुपया उसको दे दिया। उसने 1 रुपया फेंक दिया, क्योंकि हर दिन मैं कुछ और, हम लोग कुछ और देते थे उसको, उसने कहा नहीं मुझे ये रुपया नहीं चाहिए। उसकी अपेक्षा मेरे से हमसे कुछ और थी, कुछ ना कुछ वस्त्र वो चाहता था। क्या मैं सोचता हूं उसके बारे में, जब एक ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की अपेक्षा रखता है, आज हमारा स्वभाव किस प्रकार से परमेश्वर को देने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं जब न्यू टेस्ट में जाएंगे तो हम उन सिद्धांतों को देखेंगे, लेकिन हम हमारा मस्तिष्क में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हम कैसे अपने परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं, वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ किया और मुझे और आपको छुड़ाया। अगर अब्राहम परमेश्वर को दशांश दे रहा तो इस मनसा से दे रहा है, वो याद कर रहा है कि इस युद्ध में अगर मुझे विजय मिली है तो उस परमेश्वर के द्वारा जिसने मुझे ये शक्ति दी है, और ताकि मैं उस लूत को और उसके परिवार को छुड़ा सका हूं। उसकी सोच, उसका विचार अपने परमेश्वर की ओर से, तो देना न केवल हम इस देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन देने के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, देने के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्गमन की पुस्तक में, 2 कुरिन्थियों में, और क्या जहां कहीं भी देखते हैं। आइए मेरे साथ एक और स्थल में आइए जिसमें थोड़ा सा रुकेंगे, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल, यहां पर हम कुछ देर के लिए रुकना चाहेंगे, और उसका 29 अध्याय। अब दाऊद का अंतिम समय आया है, 29 अध्याय पूरी से मंदिर की भेंट के लिए, भेंट के बारे में वर्णन है। दाऊद ने अपने अंतिम समय किस प्रकार से इसराइलियों को प्रोत्साहित किया है, और लोगों ने किस प्रकार से भेंट दी है। अब जब लोगों ने भेंट दी है तो दाऊद क्या कह रहा है, थोड़ा समय नहीं लेकिन कुछ पदों पर मैं आपके सामने आपका ध्यान लाऊंगा। सबसे पहले मैं दस पद से पढ़ना चाह रहा हूं, क्या कह रहा है दाऊद 10 पद से। तब समस्त मंडली के सामने दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और दाऊद ने कहा हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर हमारे पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य हो। कैसे वो संबोधित कर रहा है, वो परमेश्वर को कैसे संबोधित कर कह रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया और दाऊद ने कहा हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर हमारे पिता। दाऊद परमेश्वर को एक ऐसे संबंध में देख रहा है जो एक पिता का संबंध है। संबंध हमारी सोच को बदलता है। जितना अधिक हम अपने संबंधों को गहरा करते हैं उतनी अधिक सोच हमारी परिवर्तित होती है। और यहां पर वो कह रहा है ना केवल लेकिन आप परमेश्वर को किस प्रकार से और ऊंचे पे देख रहा है। वो कह रहा है तू अनंत काल से अनंत काल तक धन्य है, आदि से अंत तक अनंत परमेश्वर है। हे यहोवा महिमा सामर्थ गौरव विजय एवं ऐश्वर्य तेरा ही है। यहां पर वो परमेश्वर को एक अलग रीति से जान रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है लेकिन कैसे हो कितना उसको आप जानने पाए हैं। अगर आज हम विश्वासी होने के बाद फिर भी हम छल करते हैं, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, फिर भी हम चोरी करते हैं, फिर भी हम कुछ और ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, अपने विवेक से हम समझौता करते हैं, तो इसका मतलब हमने अभी तक उस परमेश्वर को जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जाना है। राधा कृष्ण ने पॉल राधा कृष्ण ये हिंदू परिवार से प्रभु में आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी थे और उनके लिए कहा जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण पॉल, उन्होंने पॉल बाद में नाम रखा है, राधा कृष्ण का नाम था। वो अपने चाचा के पास गए, बहुत उन्होंने खोजबीन करी और उनके चाचा विश्वासी नहीं थे, उनके चाचा मसीह को नहीं जानते थे और वो अपने चाचा के पास गए, कहने लगे कि मैं बहुत दिन से कुछ खोज कर रहा हूं, मुझे बताइए कि मैं कैसे सच्चे ईश्वर को पा सकता हूं। उनके चाचा जो प्रभु को नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने बाइबल को पढ़ा था, उनके चाचा ने कहा कि राधा कृष्ण अगर तुझे परमेश्वर को जाना तो जा प्रभु परमेश्वर के वचन को बाइबल को पढ़। और लिखा कहा जाता है उनके बारे में, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने के बाद वो विश्वास में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और बाद में उन्होंने अपने नाम के आगे पॉल राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण के आगे पॉल राधा कृष्ण का। और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा उनसे पॉल प्रभु यीशु मसीह के क्लेम इतने बड़े हैं कि अगर मसीह लोग उन दावों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें तो भारत में प्रचार करने की जरूरत नहीं, पूरा भारत मसीह बन जाएगा। इसके पीछे बहुत सच्चाई छिपी है। हमने क्या अपने उस परमेश्वर को उस प्रकार से जाना है जैसा वो है? असीम परमेश्वर, अनंत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर दाऊद कह रहा है। दाऊद ने परमेश्वर को जान लिया था और तब वो कहता है ना केवल उसे जान लिया और वो कह रहा है दूसरी बात, वो कह रहा है कि जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सब तेरे द्वारा है। ना केवल उसे परमेश्वर को जाना कैसा परमेश्वर है लेकिन उसने ये भी जान लिया परमेश्वर के पास क्या क्या है। और तब वो कह रहा है आगे चल के 12 पद में धन धन एवं प्रतिष्ठा दोनों तुझी से प्राप्त होते हैं और तू सबों पर राज करता है और सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और प्रत्येक को महान करना एवं सामर्थी बनाना तेरे ही हाथ में है और इसलिए अब है हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा में नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर धन्य तेरा है, वैभव तेरे हाथ में है, महिमा तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में, एवरीथिंग बिलोंग टू यू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग टू यू गॉड। परमेश्वर सब कुछ आपका है। और जब हम इस बात की सोच रखते हैं कि आज जो कुछ मेरे पास है मेरा अपना नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का है, हमारी सोच बदलती है, हमारे तरीके बदलते हैं। मैं सुबह कल भाई लोगों के साथ डिवोशन ले रहा था, जो हमारे स्टाफ थे, मैं एक बात को शेयर कर रहा था, कुछ भाई लोग थे, मोटिव के बारे में मैं शेयर कर रहा था। हमारा जो मोटिव है, मनसा है, वो मोटिव हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, हमारे व्यवहार को चेंज करता है, मोटिव हमारे एट्रीब्यूट को चेंज करता है, हमारे गुणों को चेंज करता है, मोटिव हमारे एक्शन को चेंज करता है, हमारी क्रियाओं को चेंज करता है, बदलता है। और इसलिए हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। केवल उद्धारकर्ता तक सीमित मत रखिए उसको, और अधिक जानिए। और तब वो कह रहा है, परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर है, तेरे हाथ में सब कुछ है, सब कुछ तेरा ही है। और वो बाइबल में कई ऐसे वर्सेस हैं जहां हम जा सकते हैं, जब बार बार हगई में है, नए नियम में है, भजन संहिता में है, भजन संहिता 24:1 में है, कई जगह जहां पर बार बार ये है कि परमेश्वर के सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर है। तब उसके बाद 14 में क्या कहता है वो, तब वो अपने को देख रहा है। तब वो कहता है, पर मैं कौन हूं और मेरी प्रजा क्या है हम इतनी उदारता से तुझे भेंट दे सके। मैं कौन हूं? मैं तो उस कीड़े के समान हूं जो नाले के किनारे पड़ा रहता है, प्रभु तूने मुझे वहां से उठाया है। मेरा जीवन क्या था? मैं तो अपने मां के गर्भ में पाप से उत्पन्न हुआ था, लेकिन प्रभु तूने मुझ पर दया की है, प्रभु तूने मुझे उस स्थान से उठाया है, प्रभु तूने मुझे उस पास सुधी ली है। वो याद करता अपने दिनों को जब वो जंगल में भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। वो याद करता उन समय को जब शत्रु उसके सामने खड़े रहते, वो कई सारी परिस्थितियों को याद करता है और अपने जीवन को देता है, कैसे परमेश्वर धीरे धीरे करके उसको ला रहा है। आज यदि वो राजा बन गया है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो कह रहा है मैं कौन हूं। एक जगह और कहता है, मैं और मेरा घराना क्या है, यदि तू मेरी सुधि ना लेता तो यहोवा परमेश्वर मैं स्थान पर ना आ पाता। मैं कौन हूं? ना हमें केवल परमेश्वर को देखना है, लेकिन हमें अपने आप को भी देखना। हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमारे पास क्या है। मैं चल में काम करता था, मशीन पे काम करता था, अगर वो मशीन पे मेरा हाथ चला जाता और हाथ कट जाता, 5 उंगली चली जाती, मैं क्या कर सकता था। लेकिन अगर इन जीवनों में अगर परमेश्वर ने होने दे कि मेरे जीवन को बचा के रखा, रक्षा करी, तो परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का काम है। कितनी बार हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं, मैं क्या हूं। मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर को उस हृदय के खोल के उसका आदर नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, जब तक हम परमेश्वर को ना देखें और जो कुछ हमारे पास है उसको हम ये देखें, परमेश्वर के उस मैं कौन। तब वो आगे चलकर क्या कहता है, कह रहा है क्योंकि समस्त वस्तुएं तेरी ओर से हैं, तेरी ओर से आती हैं और तेरे ही हाथों में पाकर हमारे हमने तुझे दिया है। सब कुछ तेरी ओर से आती हैं। अगर माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं माफी मांग के बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अगर यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं अगर ईमानदारी से अपने नैनियम में तो दशवांश नहीं, दशवांश से बढ़कर है, लेकिन मिनिमम कम से कम ईमानदारी से दशवांश ही अगर दें, मेरे प्रियो सेवा में किसी चीज की घटी ना रहो। भारत को हर कलीसिया में अगर ऐसा हो जाए, लगता हूं कि जितनी कलीसिया हैं सब कलीसिया अपने अपने अपनी कलीसियाओं में ईमानदारी से देने लगे, कहीं भी बाहर हाथ फैलाने की किसी के सामने जरूरत ना पड़े। लेकिन हमने सीखा नहीं है, हमने जाना नहीं, हमने सीखा नहीं। और तब वो कहता है कि क्या है 15, क्योंकि हम तो तेरे आगे परदेशी हैं और अपने समस्त पूर्वजों के समान पराए, पृथ्वी पर हमारे दिन छाए के समान और आशा रहित हैं। हमारे दिन छाए के समान है। मनुष्य का जीवन क्या है? बल्ब बुलबुले के समान है जो दिखाई देता है और तुरंत गुप्त हो जाता है। मनुष्य के समान हरी घास के समान है, सुबह हरी दिखाई देती है, शाम को मुरझा जाती है। कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं, 2 हफ्ते पहले हम इसी का भवन में एक बिटिया से बैठे खड़े होकर हम बात कर रहे थे, हमारी बहन चंद्रशेखर के परिवार में हम उस बच्चे से बात करते हैं, आंटी ने बात करी, हमने बात करी, और आश्चर्य हो गया, एक हफ्ते बाद ये खबर मिली, उसकी मृत्यु हो गई, बीमार हुई, अस्पताल में गई, मृत्यु हो गई। मनुष्य की आयु क्या है? जब उसकी खबर मिली, मैं इतना इतना दुखी हुआ, हमें दुख, अरे कल हम उससे बात कर रहे थे, इतने अच्छी तरह बात कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। हम अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने मित्रों में इन वचनों को पूरा होते देखते, मनुष्य की आयु क्या है? एक छाया के समान है। लेकिन फिर भी हमारा जीवन क्या है? तब आगे चल के क्या कह रहा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, ये सारी धन संपत्ति जो हमने तेरे पवित्र नाम का भवन बनाने के लिए जुटाई है, वो हमें तेरे ही हाथों से प्राप्त हुई है और सब तेरी है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तुझे से मिला परमेश्वर, तूने हमें दिया है और तेरे को दे के हमने लौटा दिया। ये जो हम ऑफरिंग में, हम भेंट में जो देते हैं, हम दान शब्द का शब्द अच्छा शब्द नहीं है, हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते कभी, हम परमेश्वर को आदर के साथ भेंट चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। तो जब हम देते हैं भेंट, तो क्या कहां से? उसी ने हमें दिया, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल वो स्वास्थ्य हमें देता है, जीवन हमें देता है, हमारी दुर्घटना घटनाओं से हमारी रक्षा करता है, हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने जीवन को अर्जित कर सके, या हमारे कुछ कोई सहयोगी दे देता है जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। कहीं ना कहीं से प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो हमें रहने के लिए घर देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है, खाने के लिए भोजन देता है, किसी ना किसी प्रकार से सब कुछ। तो हम जो कह रहा है कि जो कुछ भी हमने जुटाया है, उससे पहले आप अध्यायों को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है दाऊद ने बहुत कुछ और लोगों ने स्वेच्छा से दिया, लेकिन जुटाया है, तब वो क्या कह रहा है, सब तेरा ही है। 17 पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है, वर्स 17, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं ये भी जानता हूं कि तू हृदय को जांचता और खराई से प्रश्नता पहुंचता है। मैंने तो स्वेच्छा से ये सब कुछ तुझे दिया है और यहां उपस्थित तेरी प्रजा के लोगों को स्वेच्छा पूर्वक तुझे भेंट देने देकर मुझे आनंद हुआ है। प्रभु तू हृदय की सच्चाई को देकर आनंदित होता है। मरकुस में हम पढ़ते हैं उस महिला के बारे में जो जिसने दान उसमें बॉक्स में कुछ भेंट डाली और लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है मुझे, इंग्लिश में शायद एनआईवी में लिखा है, एंड जीसस वाज वाचिंग हर, और यीशु उसको देख रहा था। अर्थात मतलब क्या है, जब हम प्रभु को किसी प्रकार से प्रभु कार्य के लिए, प्रभु के सम्मान के लिए, प्रभु के लिए कुछ देते हैं, तो परमेश्वर उसको देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे दुख जांचता है। परमेश्वर महान है, अनंत का परमेश्वर है, हमें उसको जानना, उसको समझना, उसको जहां देखना है और अधिक बढ़ते चले जाना है। फिर हमें देखना है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है उसी का देन है। मेरा जीवन, मेरी आयु क्षणिक है, और तब उसके बाद ये भी जानना है कि परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है। हम इसलिए नहीं देते, यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी और मीटिंग हो रही थी, एक पादरी साहब आए और पादरी साहब ने कहा खड़े हुए, अगर तुम 500 रुपए दोगे तो परमेश्वर तुम्हारे को इतना देगा, इतना दोगे तो इतना देगा। उसके बाद एक और आए, बाहर से बुलाए गए थे, खड़े हो गए। पादरी साहब जो कह रहे थे वो उन्होंने ठीक नहीं कहा, पादरी साहब जब कह रहे थे उन्होंने ठीक नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम 100 रुपए दोगे तो परमेश्वर तुम्हें 1000 रुपए देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, हम इस तरह से नहीं देते। हम परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग नहीं करते, हम इसलिए नहीं देते हैं कि परमेश्वर हमें और अधिक देगा, हम इसलिए देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सबसे बढ़कर अपने इकलौते पुत्र यीशु को, उद्धार को दिया है, जो धन संपत्ति सबसे बढ़कर है। यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की अनुठाए तो उसे क्या लाभ। परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर ने उद्धार दिया है, जो धन और संपत्ति से सबसे बढ़कर है, जो मनुष्य की कोई चीज नहीं दे सकती, ना हमारे काम दे सकते थे, ना हमारा प्रयास दे सकता था, ना हमारे धन की बातें दे सकती थी, ना कुछ दे सकता था, लेकिन उस यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके मेरे और आपके लिए सारे उस कष्ट को सहकर याद करिए उस वेदना को जो उसने क्रूस पर सह ली, सब कुछ करके मुझे और आपको अनंत दंड से छुटकारा दे दिया, जिसकी तुलना इस संसार के धन से नहीं होती। यह सच है, प्रभु यीशु मसीह ने करीब 25 बार से ज्यादा अपने संदेशों में धन का बारे में जिक्र किया है, अगली बार हम थोड़ा उसे देखेंगे। लेकिन हमें क्या सोचना है, परमेश्वर अब्राहम अगर भेंट को अर्पित कर सका, उस शांति के राजा को, धार्मिकता के राजा को, शलोम के राजा को, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, तो इसलिए वो उसमें देख रहा है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो देख रहा है परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या उपकार किया है, वो देख रहा है परमेश्वर कितने सम्मान का योग्य है। मेरे प्रियो, हम कितना अधिक अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मान की बात सोचते हैं, परमेश्वर के राज की बात सोचते हैं, परमेश्वर की सेवा की बात सोचते हैं, परमेश्वर की आराधना की बात सोचते हैं। जब हम जाते हैं कहते हैं प्रभु इस देने के द्वारा मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। मसीह में कोई कंगाल नहीं है। हम धनवान इसलिए नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है। हम कंगाल इसलिए नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है। हम कंगाल नहीं है, हम कंगाल होते हुए धनवान हैं। पौलुस कहता है हम बहुत दिखते तो ऐसे हैं लेकिन कंगाल दिखते, लेकिन बहुतों को हम धनवान बना देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा यीशु है और उसका सुसमाचार है। सबसे बड़ा ये मन की बात है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, हमारा मन सा, हमारे मोटिव, हमारे। और जितना अधिक हम परमेश्वर को देखते चले आते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखते चले आते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर को खींचते चले आते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। क्या हम दाऊद के समान, जो दाऊद अपने आयु के अंतिम दिनों में बातों कह रहा है और भी बहुत सारी बातें आगे चल के कहता है, लेकिन वो देख लिया उसने कि परमेश्वर कैसा है, उसने जान लिया कि उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है, उसने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर हर एक कुछ को देख रहा और जांच रहा है, जानने वाला है, वो उससे छिपा नहीं सकता, उससे बन नहीं सकता। और यही कारण था कि जो कुछ भी वो भेंट दे सके, पुराने नियम में जब भी हम भेंटों के बारे में देखते, चाहे आप नहमे में आइए, चाहे ऐजरा की पुस्तक में आइए, चाहे इतिहास में आइए, चाहे राजा की पुस्तक में आइए, चाहे निर्गमन में आइए, जो जहां उन सारी चीजों को निर्माण का काम जहां कहीं हुआ है, जहां कहीं भी, चाहे भवन बनाया गया, चाहे वाचा संदूक बनाया, जहां कहीं निर्माण का काम हुआ है, परमेश्वर के कार्य में कोई जगह में कोई कार्य हो रहा है, लोग किस प्रकार से दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं। हमारी दृष्टि परमेश्वर को देखना हमारे देने को बदल देती है। हमारी दृष्टि परमेश्वर को देखने में हमारे देने को बदल देती है। हम अपने परमेश्वर को कैसे जानते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि केवल हमारा उद्धार करते तक सीमित नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु है। और मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो कमी पाई जाती है, हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी निर्भरता परमेश्वर पर कम, मनुष्य में ज्यादा होती है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम उस परमेश्वर को नीचा ना करें, उसको ऊंचा कर सके। और जब तक जितना अधिक आप उसको ऊंचा देखेंगे, आप उतना अधिक उसकी ओर से चले आएंगे और सब कुछ बदलता चला जाएगा, सब कुछ बदलता जाएगा, सब कुछ बदलता जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम शांत हों, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए विचार करें। अब्राहम ने परमेश्वर को अद्भुत रीति से देख लिया। आज हमारे लिए हमारा परमेश्वर कैसा है।